सभी अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ते की विशेष निशानी है फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं, देह से आत्मा का रिश्ता तो है। शायद हमने कल पढ़ लिया ही ना, सॉरी। रूप नंबर 3, अपने को तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? कौन सा तख्त? भ्रुकुटी का तख्त। और आत्मा दिल तख्त, शरीर में किस तख्त पर है? अकाल तख्त। अकाल अर्थात आत्मा अकाल है, इसलिए उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा कैसी है? अकाल अर्थात अविनाशी, अकाल अर्थात जिसका विनाश ना हो, अकाल अर्थात सनातन, अकाल अर्थात अनादि। हमारा सारा ज्ञान इस चिंतन पर आधारित है, तो हमको आत्मा के विषय में जितनी ज्यादा जानकारी हो उतना अच्छा। और क्या है आत्मा? अमर, अकाल, अविनाशी, एक ही बात है। दूसरी पॉइंट्स हल्की है, लाइट है, चमकता हुआ सितारा मिसल है, और
शक्तिशाली।
आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा के गुण क्वालिटीज जैसे कि वो अविनाशी है, ये एक हो गया। अविनाशी का हो, अमर का हो, अनादि सनातन का हो, अनादि का हो। आत्मा अजर है, अमर तो हो गया, अजर अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट है आत्मा अजर है। तीसरा और क्या? आत्मा अव्यय। आत्मा में तो विकार होते हैं, अनादि स्वरूप है आत्मा का, संपूर्ण पवित्र। आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं दे सकती। अक्षर अर्थात अक्षय,
अक्षर
जिसका कोई अक्षर ना हो, ऐसे
अक्षय
अक्षय हो सकता है। आत्मा अक्षय, अक्षय भी है, उसका कभी क्षय नहीं होता। आत्मा अक्षर भी है और भय तो आत्मा को ही लगता है ना। आत्मा चेतन है, चेतनता आत्मा का गुण है। आत्मा में कई जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। बाबा ने कहा ना, इस बात में तुम्हें वंडर लगना चाहिए, कितनी छोटी सी आत्मा उसमें इतने जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मति सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता है। अगोचर है, दृष्टि से जिसे देखा नहीं जा सकता। और आत्मा ही सब कुछ करने वाली है, इस तन में आत्मा ही सब कुछ करती है, करता है वो इस तन भी। आत्मा ही देख रही है, आत्मा ही सोच रही है, आत्मा ही निर्णय कर रही है, आत्मा ही बोल रही है। आत्मा में ही मन, जो हम 7 डेज कोर्स में सबको सुनाते हैं ना, मन बुद्धि संस्कारमयी है आत्मा। तो योग के समय हमारा चिंतन जो चालू हो वो यहां से चालू हो। कहां से? कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूं। आत्मा एक ज्योति पुंज है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा एक ज्योति का कण है। ये उसकी सूक्ष्मता के बारे में। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, सनातन है और आत्मा चेतन है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, बिना आत्मा के शरीर निष्प्राण है, निर्जीव है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा है इसके लिए शरीर है। और भी कुछ है आत्मा के बारे में? आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, हो गया, सिक्योर,
ऑलवेज सिक्योर।
इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार योग में रिवाइज करने हैं। और मैं आत्मा इस देह से भिन्न हूं, मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, ये भी चिंतन करना है। निरंतर आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास। अगर ये निरंतर स्मृति नहीं है और केवल ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम स्थिर कर रहे हैं शरीर को और आत्मा को स्थिर नहीं कर रहे, तो ये केवल अपने ऊपर नियम थोपना है और कुछ नहीं। ये भी एक प्रकार का दमन ही है, ये भी एक सप्रेशन है, जिससे प्राप्ति कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना अर्थात निरंतर आत्मा के चिंतन में मगन रहना, निरंतर आत्मा के बारे में सोचते रहना। ये तो हो गया स्व के प्रति, और फिर दूसरों के प्रति भी, कि जैसा ये मैं सब हूं वैसे ये सब भी कौन है? आत्माएं हैं। ये तो हमने केवल आत्मा के क्या है अस्तित्व के बारे में सोचा, इसके बाद है आत्मा के समान, आत्मा के गुण, उसका एक अलग चिंतन। तो हम खाली योग करें तो केवल आत्मा के अस्तित्व के बारे में, आत्मा के गुण विशेष के बारे में, फिर आत्मा के समान क्या है उस बारे में, तो ये भी एक संपूर्ण योग है। क्योंकि जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते, आत्मा के संबंधित जो भी बातें वो स्वतः याद आती। फिर बाबा को याद करने की अलग से जरूरत नहीं, वो स्वतः ही आत्मा को अपने परमधाम याद आएगा, आत्माओं का देश याद आएगा, बाप याद आएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति ही सर्वशक्तिशाली स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल है ना, आत्मा अकाल है, इसके लिए इसकी उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा शरीर में सदा ब्रिकटी के बीच अकाल तख्त नशीन है। तो तख्त नशीन जो होता है उसको राजा कहा जाता है। तख्त पर तो राजा ही बैठेगा ना, तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नशीन राजा हो। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, ये भी एक सुंदर सा समान है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती है। तो बाप के दिल का दूसरा जो तख्त है वो भी प्राप्त करने वाले कौन है? जो अकाल तख्त नशीन है, अर्थात जो आत्मा अभिमानी है, जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित है। देही अभिमानी स्थिति केवल एक बैठी बैठी अवस्था नहीं है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी स्थिति, अर्जुन। तो तीनों ही तख्त कायम है। कौन से तख्त? अकाल तख्त पर तो अभी बैठ गए, दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? जो जो उसने कहा वो सब सुख करना, जो उसने कहा वो करना, आज्ञाकारी अगर बनेंगे, फॉलो करेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं। तख्त पर बैठना आता है या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हो? जो पहले तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? तख्त पर बैठना। अगर तख्त पर न बैठकर बाप को याद करते तो उसको क्या कहेंगे? भक्त। क्योंकि आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित न होकर बाप को याद करती है तो उसमें फिर फरियाद भक्ति है। फिर वो फिर बाबा से उसमें मांगते रहते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, पर जब आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आत्मा देह से अलग होती है उसमें शक्तियां स्वतः ही भरना चालू हो जाती है। शर्त है कि उसको देह से अलग करो। और जो दिल तख्त नशीन है वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन हो सकते हैं। तो पहला आधार
अकाल
तख्त, स्वराज्य है तो विश्व राज्य। उसी को बाबा ने फिर अलग अलग शब्द कहे स्वराज्य भी कहा है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वह विश्व का राज्य नहीं कर पा सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रुकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त है। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ? अकाल तख्त। तो सीधा हम उसी एक प्रश्न पर आ गए कि मैं कौन, और उत्तर तुम हो। प्रश्न का उत्तर ही तुम हो, यह कोई उत्तर दूसरा नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं हूं, मैं ही हूं, उत्तर ही मैं हूं। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा